अध्याय 10 काव्य शिल्प। मार्मिक भाव विधान की भांति ही व्यंजना कौशल की दृष्टि से भी घनानंद की कुछ निजी विशेषताएं हैं। इन्हें अच्छी तरह समझे बिना उनकी भाव योजना के वैशिष्ट का उद्घाटन पूर्ण नहीं हो सकता। कथे को पाठक तक सही ढंग से सुगमतापूर्वक पहुंचाने का एकमात्र साधन काव्य शिल्प ही है, इसलिए काव्य में इसके महत्व को निर्विवाद रूप से स्वीकार किया गया है। रीतिकाल जिसमें घनानंद का कवि पल्लवित पुष्पित हुआ था शिल्प प्रधान युग था, फलस्वरूप उसे कलाकाल अलंकृत काल आदि नामों से भी अभिहित किया गया है। रीतिकाल अपने आप में विषयगत या कलागत रूढ़ियों की प्रधानता का संकेतक है, इसमें रीति या प्रणाली की को विशेष महत्व दिया गया है। घनानंद में शिल्प के प्रति कोई वैसा आग्रह नहीं दिखाई देता जैसा कि अन्य रीतिबद्ध कवियों में हम देखते हैं, फिर भी ये काव्य के कला पक्ष के प्रति पर्याप्त जागरूक दिखाई देते हैं। इन्होंने भी सर्वत्र प्रायः अलंकृत शैली का सहारा लिया है, लेकिन विषय और शिल्प के समुचित सामंजस्य को देखते हुए हम इन्हें कलावादी नहीं कह सकते। पांडित्य या चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति इनमें कहीं नहीं मिलती। इसे ठीक से समझने के लिए घनानंद की भाषा शैली के कुछ विशिष्ट पहलुओं पर विचार कर लेना आवश्यक है। भाषा भाषा भाव और विचारों की वाहिका होती है, अतः वह जो भी हो यह तो ठीक है, किंतु जैसे भी हो इसे उचित नहीं माना जा सकता। इस उक्ति के आधार पर रीतिकाल के प्रमुख आचार्य कवि भिखारी दास ने तुलसी और गंगा को कवि शिरोमणि के रूप में स्वीकार किया था। उनकी एतद विषयक मान्यता है, तुलसी गंग दुओ भये सुकविन के सरदार, जिनकी कविता में मिले भाषा विविध प्रकार। भिखारी दास ने तत्कालीन भाषा प्रयोग की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर ही ऐसी मान्यता निर्धारित की थी। समुचे रीतिकाल में ब्रजभाषा को प्रमुखता देते हुए भी उसके साथ विभिन्न बोलियों में प्रचलित शब्दों का खुला मिश्रण किया गया। यह प्रवृत्ति काव्य भाषा के लिए बहुत हितकर नहीं सिद्ध हुई। रीतिकालीन ब्रजभाषा काव्य साहित्य में जहाँ छंद अलंकार कवि वर्णन पर पाठ आदि पर इतने विस्तार से विचार किया गया, वहाँ भाषा के संबंध में एक भी ठीक ठिकाने का ग्रंथ नहीं लिखा गया। इससे भाषा प्रयोग के संबंध में एक प्रकार की अराजकता दिखाई देती है। घनानंद ने इस अराजकता को अपने को बचाया है। इनके सुजान हित विशुद्ध ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। इश्क बेली तथा कुछ पदों में जहाँ कवि ने अरबी फारसी और पंजाबी भाषा का प्रयोग किया है, वहाँ ब्रज भाषा को उसमें जबरदस्ती नहीं घुसेड़ा है। यह प्रवृत्ति उनकी काव्य भाषा संबंधी नीति का संकेत करती है। काव्य की भाषा को व्याकरण च्युति शैथिल्य अर्थ को व्यक्त करने में अक्षम शब्दावली दुरूहता आदि के दोषों से मुक्त होना ही चाहिए। कथ्य को प्रेषणीय बनाने के लिए उसका व्याकरण अनुमोदित होना, शब्दावली का सुविचारित सुव्यवस्थित सटीक होना, भावाभिव्यक्ति में सहायता पहुंचाने वाले शब्द शक्तियों लोकोक्ति मुहावरों आदि से युक्त होना भी आवश्यक है। इन सबकी समुचित योजना से कवि अपनी अभिव्यक्ति को पैनी बनाता है। घनानंद की भाषा पर इन सभी दृष्टियों से विचार करके ही हम इनकी एतद विषयक विशेषताओं को समझ सकते हैं। क व्याकरण की दृष्टि से घनानंद के प्रशस्तिकार ब्रजनाथ ने इन्हें ब्रज भाषा प्रवीण और भाषा प्रवीण दोनों बताया है। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि यह ब्रजभाषा का प्रयोग में निपुण होने के साथ ही भाषा के सामान्य गतिविधियों के भी समर्थ पारखी थे। कुछ आलोचकों ने भाषा प्रवीण का अभिप्राय बहुभाषा प्रयोग माना है। घनानंद की भक्ति विषयक रचनाओं में अरबी फारसी पंजाबी अवधी आदि भाषाओं का प्रचुर प्रयोग देखकर यह ऐसा तात्पर्य निकाला गया है, लेकिन हम पहले ही इस तथ्य को देख चुके हैं कि जहाँ कवि ने अरबी फारसी या पंजाबी का सहारा लिया है, वहाँ भाषा का स्वरूप अरबी फारसी या पंजाबी के अनुकूल रहा है, उसमें ब्रजभाषा की अनावश्यक घुसपैठ नहीं होने दी है। इसी तरह ब्रजभाषा के साथ ही उसने दूसरी भाषाओं के शब्दों का मिश्रण नहीं होने दिया है। घनानंद की कीर्ति के प्रमुख स्तंभ सुजान हित में विशुद्ध ब्रजभाषा का ही प्रयोग हुआ है, अतः उनकी ब्रजभाषा प्रवीणता का विश्लेषण इस रचना के आधार पर ही करना उचित होगा। घनानंद की भाषा संबंधी विशेषताओं को समझने के लिए सर्वप्रथम ब्रजभाषा के स्वरूप का विचार करना आवश्यक है। इन्होंने इसके शुद्ध और साहित्यिक स्वरूप की रक्षा का पूर्ण ध्यान रखा है। हमने इस तथ्य को पहले ही देख लिया है कि रीतिकाल में काव्यशास्त्र के अंतर्गत अलंकार पिंगल आदि के नियमों की तो खूब चर्चा हुई, लेकिन भाषा के शुद्धता और उसके व्याकरण की ओर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया गया। आधुनिक युग में बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने जब साहित्यिक ब्रजभाषा का व्याकरण लिखने का निश्चय किया तो रीतिकाल के केवल दो ही कवि मिले जिन्हें प्रामाणिक आधार बनाया जा सकता था। इनमें एक घनानंद और दूसरे बिहारी थे। रीतिकाल में ब्रजभाषा के साथ अवधि का मिश्रण सबसे अधिक हुआ है। शब्द रूपों की दृष्टि से अवधि की प्रकृति अकारांत और लघ्वंत है, जबकि ब्रजभाषा की प्रकृति ओकारांत दीर्घांत है। अवधि में कर्तरी प्रयोग होता है, जैसे हम कहें, वे पढ़ें, तुम सुने आदि। इसके विपरीत ब्रजभाषा में प्रायः कर्मणि प्रयोग होता है और खड़ी बोली की तरह कर्ता कारक में करण कारक का चिन्ह ने बहुत से स्थानों पर लगता है, जैसे विन्ने, कहीं, उन्ने, सुनी आदि। इस प्रकार की दो विरोधी प्रकृति की भाषा के शब्दों के मिश्रण से अर्थ ग्रहण में बाधा उत्पन्न होती है। काव्य का अध्ययन करते समय हम भाषा के एक निश्चित स्वरूप को ध्यान में रखते हैं, अतः बीच बीच में अन्य भाषा के आने वाले शब्द और उनके प्रयोग खटकते हैं। इस दृष्टि से विचार किया जाए तो हम देखेंगे कि गणानंद ने ब्रजभाषा के व्याकरण और शब्द निर्माण की उसकी प्रकृति का वर्णन सर्वत्र ध्यान रखा है। इनकी कविता सवैयों में अवधि के शब्द कठिनाई से मिलेंगे। यदि अन्य बोलियों के कुछ शब्द कहीं आए भी हैं तो उन्हें कवि ने बड़े ही स्वाभाविक ढंग से ब्रजभाषा के व्याकरण में निबद्ध कर दिया है। ब्रजभाषा की शुद्धता और व्याकरण व्यवस्था की दृष्टि से केवल बिहारी ही इनके समकक्ष रखे जा सकते हैं। क्रिया, कारक आदि का रूप विधान, तद्भव रूपों का प्रयोग आदि घनानंद ने ब्रजभाषा के नियमानुसार ही किया है, अतः ब्रजभाषा प्रवीण कहना सर्वथा संगत है। ख, शब्दावली की दृष्टि से बिहारी के साथ ही रीतिकाल के अधिकांश कवियों में हमें फारसी, अरबी, अवधी, बुंदेली, वैसवाड़ी, भोजपुरी, स्थानीय आदि के पर्याप्त शब्द मिलते हैं, लेकिन अपनी ब्रजभाषा की रचनाओं में घनानंद ने इनका समावेश नहीं के बराबर किया है। केवल भाषा की शुद्धि ही नहीं, परम शब्द चयन और शब्द निर्माण की दृष्टि से भी ज्ञानानंद ने अपनी विशिष्टता का परिचय दिया है। इसे एक उदाहरण द्वारा चित्र समझा जा सकता है। कित को ढोर गौर व ढार अहो जिहि मोतन आखिन ढोरत हे, अरसान गही उही बान कछु सरसान सु आन निहोरत हे, गन आनंद प्यार सुजान सुनो तब यो सब भातिन भोरत है, मन माहि जो तोरन ही तो कहो विश्वास स्नेह क्यों जोरत है। हरि गए ढार, ढोरत, अरसानी, सरसानी, निहोरत, भोरत आदि शब्द कवि की शब्द निर्माण शक्ति के परिचायक हैं। ढोर शब्द ढाल या ढलान के अर्थ में प्रयुक्त होता है, लेकिन यहाँ इसका प्रयोग कृपा या द्रवीभूत होने के अर्थ में हुआ है, अतः ढरिगौ ढल गया के स्थान पर समाप्त हो जाना के अर्थ में आया है, और ढोरत ढुलकाने या लुढ़काने के स्थान पर अनुकूल होने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यही स्थिति अरसानी, सरसानी, निहोरत, भोरत आदि शब्दों की भी है। कवि ने इन्हें नवीन अर्थ प्रदान किए हैं। घनानंद की इसी विशेषता को लक्ष्य कर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि भाषा की पूर्व अर्जित शक्ति से ही काम न चलाकर इन्होंने अपनी ओर से नई शक्ति प्रदान की है। भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। कवि के शब्द प्रयोग और शब्द निर्माण की इस विशेषता का हम आगे लाक्षणिकता के प्रसंग में विशेष रूप से देखेंगे। यहाँ इनका इतना जान लेना पर्याप्त है कि व्याकरण और शब्दावली दोनों ही दृष्टियों से गणानंद की भाषा अन्य सभी ब्रजभाषा कवियों की अपेक्षा अधिक शुद्ध और व्यंजक है। ग, शब्द शक्तियों की दृष्टि से व्याकरण एक शुद्धता, भावानुकूल एवं प्रसंगानुकूल शब्दावली के चयन के साथ ही भाषा में निहित शब्द शक्तियों का ज्ञान भी कवि के लिए आवश्यक है। मेरे विचार से ब्रजनाथ द्वारा गणानंद को भाषा प्रवीण कहना भाषा के अनन्य गतिविधियों और उसकी शब्द शक्ति से पूर्ण परिचय का संकेतक है। शब्द जब अपने सामान्य अर्थबोध से भावाभिव्यक्ति में असमर्थ हो जाते हैं तब कवि के लिए शब्द साधना आवश्यक हो जाती है। भाषा की शक्ति संपन्नता पर विचार करते हुए भारतीय साहित्य शास्त्र में शब्द की तीन शक्तियों अविधा, लक्षण और व्यंजना शक्ति पर बड़े विस्तार से विचार किया गया है। वाच्यार्थ का बोध करवाने वाली शक्ति अविधा होती है। वाच्यार्थ के साथ उसे छोड़कर लक्षार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को लक्षणा कहते हैं। अविधा और लक्षणा शब्द शक्तियाँ जब जवाब दे जाती हैं तब कवि व्यंजना शक्ति का सहारा लेता है। लक्षण और व्यंजना के क्षेत्र में मध्ययुग के कवियों ने कम ही प्रवेश किया है। घनानंद उस युग में अकेले कवि हैं जिन्होंने इन शक्तियों का पूरा उपयोग किया है। इनकी इस प्रवृत्ति को लक्ष्य कर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि भाषा के लक्षक और व्यंजक रूप की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। लक्षणा का विस्तृत मैदान खुला रहने पर भी हिंदी कवियों ने उसके भीतर बहुत ही कम पैर बढ़ाया। एक घनानंद ही ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में अच्छी दौड़ लगाई है। यहाँ लक्षण और व्यंजना की तकनीकी बारीकियों और पारिभाषिक सीमाओं की ओर जाने की अपेक्षा कवि की लाक्षणिक प्रयोग और लाक्षणिक मूर्तिभत्ता संबंधी विशेषताओं पर विचार करना हमारे लिए अधिक उपयोगी होगा। लाक्षणिकता घनानंद की भाषा की प्रमुख विशेषता है। इसके द्वारा कवि ने एक ओर अनिर्वचनीय भाव स्थितियों और मनोदशाओं के समुचित अभिव्यक्ति की है, दूसरी ओर अमूर्त भावों को मूर्त रूप देकर उन्हें संवेदनीय बनाया है। कुछ उदाहरणों द्वारा इस तथ्य को आसानी से समझा जा सकता है। गतिन तिहारी देख थकिन में चली जात, थिर चर दशा कैसे ढकी उगरती है। कल न परति कहूँ कल सु परति होए, पर नि परी हों जान परी न परति हैं। हाय यह पीर प्यारे कौन सुने का सौ कहूँ, सहो घना आनंद क्यों अंदर अरति हैं। बोलन चिन्हरी दो हो न हो हमारे ताते, बिसरन रावरी हमें बिसरति हैं। प्रिय की अतिशय निश्रुता को देखकर विषम प्रेम की पीड़ाग्रस्त विरहणी की आंतरिक वेदना की सांकेतिक अभिव्यक्ति इस कवित्त में हुई है। अनिर्वचनीयता की अभिव्यक्ति में वाणी वक्रता की किस सीमा तक जा सकती है, इसका अद्भुत प्रमाण इस कवित्त में मिलता है। ये सारी वक्रता विलक्षण लाक्षणिक प्रयोगों के माध्यम से आई है। गति को देखकर थकना अर्थात प्रिय की उपेक्षा की आदत को देखकर विथकित हो जाना, थकने में भी चलते जाना अर्थात दुर्दशा में भी जीवन काटते रहना, अचल और चल दशा का ढके हुए उघरना अर्थात अस्पष्ट बने रहना, परनी का न जान पड़ना अर्थात पड़ी विपत्ति का पता न लगना, भूलनी और चिन्हारी दोनों का साथ न होना अर्थात स्मरण और विस्मरण की भावना से रहित चेतना शून्य हो जाना, विसरणी का ले विसरना अर्थात विस्मरण द्वारा आत्मविस्मृति के गर्त में डाल दिए जाना, आदि सभी प्रयोग लक्ष्यार्थ के संकेतक हैं। लेकिन यहाँ इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि उक्त प्रयोग लक्षणा या व्यंजना के पारिभाषिक दायरे में आबद्ध नहीं है। लक्षणा में वाचार्थ बाधित हो सकता है और लक्षार्थ के साथ भी रह सकता है। यहाँ संपूर्ण चमत्कार प्राय अभिधा मूलक ही है और अभिप्रेत अर्थ की सिद्धि भी बहुत कुछ अभिधा व्यापार से ही होती है। वैसे अभिधा को अधम काव्य माना गया है, लेकिन कुछ काव्यशास्त्रियों ने लक्षण को हेय और अभिधा को श्रेष्ठ काव्य माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो काव्य को अभिधा व्यापार ही मानते हैं। इस दृष्टि से विचार किया जाए तो घनानंद के ये प्रयोग शब्द शक्तियों के शास्त्रीय दायरे का अतिक्रमण कर एक ओर इनकी उन्मुक्त दृष्टि का परिचय देते हैं और दूसरी ओर एक अभिनव व्यंजना पद्धति का भी संकेत करते हैं। घनानंद के संबंध में इस तथ्य को लक्ष्य कर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी है, खेद है कि वह फिर 125 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल के नूतन काव्यधारा छायावाद में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए हुए प्रकट हुई। इस तत्व के कुछ अन्य उदाहरणों के माध्यम से अच्छी तरह समझा जा सकता है। पहला, रूप की रहे न दहे घन आनंद, बामरे रीझ के हाथन हारिए। दूसरा, बदरा बरसे ऋतुमय घिरिकए, नितहिं अखियां उघरिं बरसें। तीसरा, उजरनी बसी है हमारी अखियानि देखो, शुभ सुदेश जहाँ रावरे बसत हो। चौथा, अकुलन के पानी परियो दिन रात। पांचवा, पियराई छाई तन सियराई लो दहो। छठा, वही हैं सौ घरी भाग उघरी आनंद घन, सुरस बरस लाल देखियो हरि हमें। उक्त उदाहरणों में लाक्षणिकता और प्रयोग वैचित्र चमत्कार विधान की अपेक्षा भाव को तीव्र बनाने में सहायक सिद्ध हुए हैं। प्रथम उदाहरण में व्यक्त भाव है रीझ पर किसी का वश नहीं, लेकिन इस कथन में रीझ की वह तीव्रता नहीं जो बावरी रीझ के हाथ हारने में है। रीझ आसक्ति के अर्थ में भाववाचक संज्ञा है, लेकिन कवि ने यहाँ उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप देकर उसका समूर्तन किया है। दूसरे उदाहरण में उघरी बरसय के स्थान पर खोलकर बरसय से भी काम चलाया जा सकता था, किंतु गिरी के बरसय के संदर्भ में उघरी बरसय से आँखों की जो व्याकुलता प्रत्यक्ष हुई है वह खोलकर बरसय से संभव नहीं थी। यहाँ बादल और आँखों में विरोध दिखाकर चमत्कार भी उत्पन्न किया गया है, लेकिन यह चमत्कार मूसलाधार वृष्टि को मूर्त भी करता है। इस प्रकार खुलकर बरसना मुहावरे को यहाँ नया संस्कार प्रदान किया गया है। तीसरे उदाहरण में उजरन बसी है के स्थान पर हमारे नेत्र उजड़ गए हैं, उन्हें चारों ओर कुछ नहीं दिखाई देता आदि प्रयोग स्थिति की गंभीरता और तीव्रता को नहीं व्यक्त कर पाते। यहाँ कवि ने उजरन शब्द को कर्ता रूप में प्रमुखता देकर उजाड़पन को सम्मूर्तित किया है। यही बात चौथे उदाहरण में भी मिलेगी, अकुलानी की पानी परियों में भी जो तीव्रता आई है वह प्राण अत्यधिक व्याकुल हो गए हैं में कभी नहीं आ पाती। व्याकुलता भाववाचक संज्ञा है, लेकिन इसे बहुवचन में प्रयुक्त कर जातिवाचक संज्ञा का रूप दिया गया है। इसी प्रकार रीझ से रीझनी, लाज से लाजनी, व्यथा से व्यथानी, सुंदरता से सुंदरतानी आदि प्रयोगों द्वारा कवि ने अधिकांश स्थलों पर सूक्ष्म भावों को सघन करने का सफल प्रयास किया है। पांचवें उदाहरण में सियराय लदहों विरोध मूलक विलक्षण प्रयोग है, जो भी रानी की विषम व्यथा को संकेतित करता है। इस प्रकार के लाक्षणिक प्रयोग प्रसाद आदि छायावादी कवियों में भी देखने को मिलते हैं। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दिग जल का, यह व्यर्थ श्वास चल चल कर करती है काम अनल का। इस प्रकार के अनेक प्रयोग घनानंद ने भी किए। छठवें उदाहरण में खुली भाग्य वाली घड़ी को विशेषण विपर्य की संज्ञा दी जा सकती है। वस्तुतः घड़ी खुले भाग्य वाली नहीं होती, वरन आदमी खुले भाग्य वाला होता है, क्योंकि उसी का भाग्य खुलता है। यहाँ शुभ मुहूर्त के लिए खुले भाग्य वाली घड़ी का प्रयोग कर कवि ने अपने अपूर्व अभिव्यंजना कौशल का परिचय दिया है। देखिए हम हरि के संदर्भ में खुले भाग्य वाली खड़ी के प्रयोग को एक विशेष सार्थकता प्राप्त हुई है। आनंद घनानंद का एक ही कविता सवैया ऐसी कठिनाई से मिलेगा जिसमें लाक्षणिक मूर्तिमत्ता या प्रयोग वैचित्र का सहारा न लिया गया। घ मुहावरे और लोकोक्तियां। काव्य भाषा जब जीवन की भाषा या सामान्य बोलचाल की भाषा से पूरी तरह अलग हो जाती है, तब चाहे उसे जितना भी अलंकृत किया जाए उसमें जीवन का सहज स्पंदन नहीं आ पाता। घनानंद की भाषा भी यद्यपि पूर्णतः काव्यात्मक और अलंकृत है, फिर भी मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा कवि ने उसे जीवन के निकट लाने का सफल प्रयास किया है। मुहावरे लोकोक्तियां जीवन में चिरकाल से चले आ रहे भावपूर्ण एवं चमत्कारपूर्ण प्रयोग होते हैं। इनमें जीवनगत अनुभवों को अत्यंत संक्षेप में व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता होती है। काव्य में स्थान प्राप्त करिए जहाँ एक ओर उसमें स्वाभाविकता और सजीवता का संचार करते हैं, वहीं दूसरी ओर भाषा का विभक्ति क्षमता में अपूर्व वृद्धि करते हैं। मुहावरों का निर्माण भी लक्षणा के सहारे होता है, किंतु लोक समाज में बार बार प्रयुक्त होने के कारण वे एक निश्चित अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। लोकोक्तियाँ पूर्ण वाक्य या कथन होती हैं जो अपने सुंदर अंदर एक पूरा अनुभव जगत लिए रहती हैं। भाषा के अंदर इनका प्रयोग वाक्य से अलग उदाहरण या दृष्टांत के रूप में किया जाता है। इनके स्वरूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किए बिना ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया जाता है, अतः बिना किसी परिवर्तन के काव्य में इन्हें छंदबद्ध करना कठिन होता है। वाक्य का छंद आवश्यकता के अनुसार मुहावरे के स्वरूप को आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है, अतः इनका काव्य में प्रयोग आसान होता है। यद्यपि ज्ञानानंद का झुकाव लोकोक्तियों की अपेक्षा मुहावरों की ओर अधिक है, फिर भी इन्होंने कुछ लोकोक्तियों का अत्यंत सार्थक प्रयोग अपने काव्य में किया है। कुछ उदाहरणों द्वारा इसे आसानी से समझा जा सकता है। पहला, रह नि दिन चैन कुन लेस कहूँ पइये, भाग अपने ही ऐसे दोष कधे लो लगाइए। दूसरा, सुने है कई ना ही यह प्रकट कहावनी, जो का हो कल पाए हैं सु कैसे नकल पाए हैं। संदर्भ साम्य और दृष्टांत के रूप में प्रयुक्त होने के कारण लोकोक्तियां सामान्य कथन में घुल मिल जाती हैं। साम्य के पूर्ण सिद्धि जाने पर तो ये अलंकार की कोटि में आ जाती है। कुछ लोकोक्तियों की छाया का उपयोग भी घनानंद ने अपने काव्य में किया। हित कह हु तनि कहूँ का हूँ पाई पतीरे, मान मेरे जियरा बनी जो कैसो मोल है। लोकोक्तियों की अपेक्षा मुहावरों का प्रयोग उपयोग काव्य में अधिक आसानी से हो सकता है। अपने विशेष लाक्षणिकता के कारण इनमें भाषा के अभिव्यक्ति क्षमता में अपूर्व वृद्धि होती है। ज्ञानानंद के बिरले कवित्व सवैये ऐसे मिलेंगे जिनमें किसी मुहावरे का प्रयोग न हुआ। कुछ उदाहरणों द्वारा कवि की एतद विषय वैशिष्ट्य का उद्घाटन आसानी से हो जाएगा। पहले अपनाए सुजान स्नेह सो, क्यों कि फिर तेह कतरियो जो, निर्धार आधार देधार बझार, दई गही वाहन बोरियो जो, घन आनंद आपन चातिक को, गुण बाध लय मोहन छोरियो जो, रस प्याज के ज्याय बढ़ाए कयास, विशास मयो विष धोरियो जो। इसमें गही बाह सहारा देने के अर्थ में एक मुहावरा है, किंतु गही बाहन बोरियो सहारा देकर असमय हाथ खींच लेना एक अलग मुहावरा बन जाता है। ये दोनों ही मुहावरे निर्धार आधार के धार मझार के पूरे संदर्भ में इस तरह रखे गए हैं कि इनकी अभिव्यक्ति क्षमता में और अधिक वृद्धि हो जाती है। किसी निराधार को सहारा देकर मध्य धारा में ले जाना और वहां पकड़कर डुबा देना अनुभय निष्ठ प्रेम की मूल प्रकृति का उद्घाटन करता है। यही बात विश्वास में यों विष घोरियो अर्थात विश्वासघात करने में भी है। रस पिलाकर जिलाने और आशा बढ़ाने के संदर्भ में यह मुहावरा और अधिक व्यंजक बन गया है। इस संबंध में दूसरा उदाहरण है, घन आनंद जान कान करे, इतके हित की कित को कहें, उत उवर पाय लगे मेहदी, सुकहा लगे धीरज हाथ रहे। यहाँ कान पांव मेहदी लगाना, हाथ रहना आदि मुहावरों का बड़ा स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। घनानंद के मुहावरा प्रयोग की यह मुख्य विशेषता है कि वे काव्य भाषा में पूरी तरह से रल मिल गए हैं, उन्हें अलग करके यहाँ पहचान पाना कठिन हो गया है। वस्तुतः ये मुहावरे कवि की लाक्षणिकता की प्रवृत्ति के अभिन्न अंग बन गए हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि घनानंद की भाषा व्याकरण सम्मत भावानुकूल शब्द योजना से पूर्ण शब्द शक्तियों लोकोक्तियों मुहावरों और लाक्षणिकता से युक्त अत्यंत प्राणवान साहित्यिक ब्रज भाषा है। आवश्यकतानुसार जहाँ एक ओर यह लाक्षणिक प्रयोगों और प्रयोग वैचित्र का सहारा लेकर वक्र पथगामिनी बनी है, वहीं दूसरी ओर मानसिक द्रवण के अत्यंत मार्मिक क्षणों में कोमलकांत पदावली से संयुक्त होकर अत्यंत सीधे सहज मार्ग पर भी प्रवाहित हुई है। सरल एवं प्रवाह युक्त भाषा का एक उदाहरण है घन आनंद प्यार सुजान सुनो, जि भांति न हो दुख सूल सहो, नहीं आवनि औधिन रावरी आस, इत पर एक सी बाट चहो, यह देखिय कारण मेरी दशा, को बुझे तो ऊपर कौन कहो, जे अनेक विचार के देहूँ बताए, हहा प्रिय दूर इति पाय गहूँ। शिल्प संबंधी कुछ निजी विशेषताएं। अपने इस तथ्य को पहले ही देख लिया कि घनानंद की काव्य भाषा भावाभिव्यक्ति में इतनी समर्थ है कि उन्हें अप्रस्तुत विधान का बहुत कम सहारा लेना पड़ा है। वैसे तो गिनाने के लिए इनकी रचनाओं में काव्यशास्त्र के अंतर्गत परिगणित सभी अलंकारों को ढूंढा जा सकता है, किंतु वास्तविकता यह है कि इन्होंने सादृश्य पर आधारित साम्य मूलक अप्रस्तुत विधान का बहुत ही कम सहारा लिया है। हाँ, एक तरफा प्रेम की विषम स्थिति को चित्रित करने के लिए कवि ने वैषम्य मूलक अलंकारों विशेषकर विरोधाभास का पर्याप्त सहारा लिया है। विरोधाभास को इनकी निजी विशेषता माना जा सकता है। घनानंद के काव्य में विरोध की इस प्रवृत्ति को लक्ष्य करके आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है, विरोधाभास के अधिक प्रयोग से घनानंद की सारी रचना भरी पड़ी है। साहसपूर्वक कहा जा सकता है कि इस पुस्तक में कहीं भी यह प्रवृत्ति न दिखाई दे उसे बेखटके घनानंद की कृति से पृथक किया जा सकता है, और जहां यह प्रवृत्ति दिखाई दे उसे निसंकोच इनकी कृति घोषित किया जा सकता है। वस्तुतः इस विश्वास के आधार पर ही मिश्र जी ने घनानंद ग्रंथावली का संपादन किया है। कवित्त सवैयों से लेकर पदावली और अन्यान्य भक्ति विषयक इनकी रचनाओं में हम समान रूप से इस तथ्य को आसानी से देख सकते हैं। यहाँ यह तथ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि घनानंद की रचनाओं में लक्षणबद्ध विरोधाभास मात्र न होकर अधिकांशतः सार्थक और तात्विक विरोध की स्थिति सामने आती है। इसके मूल में उनके जीवन का एक तरफा विषम प्रेम है, वहाँ प्रेमी और प्रिय के मध्य एक तात्विक और वास्तविक विरोध है। इसीलिए काव्यगत विरोध भी विरोध का अभ्यास मात्र न होकर प्रायः तात्विक विरोध के रूप में ही आया है। इसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। पहला, हाय स्नेह स्नेह स्वरूख है, रुखाई सोहय चिकने अति मोहाओ, आपन पौ अरु आपहु ते करी, हाथे हताओ घन आनंद कोहाओ। दूसरा, कौन घरी बिछुरव सुजान जो, एक घरी मन तेन बिछौहाओ, मोह की बात तिहार या सूझ, पय मोहिय कौ तो अमोहिय मोहाओ। पहले उदाहरण में स्नेह स्वरूख होना, कोष्टक में स्नेह प्रेम तेल रुखे रक्षित रुक्ष कोष्टकम, रुखाई बेरुखी रुक्षता चिकने पूर्ण स्निग्धता तथा अपनेपन और अपने से दूर करके मारने में विरोध है, लेकिन अधिकांशतः श्लेष मूलक होने के कारण यहाँ विरोध का आभास मात्र न होकर सर्वत्र तात्विक विरोध दिखाई देता है। दूसरे उदाहरण में बिछुड़ कर भी एक क्षण के लिए मन से न बिछुड़ना और अमोही होकर भी मोहना में तात्विक विरोध है। वस्तुतः इस प्रकार के तात्विक विरोध द्वारा कवि ने प्रेमी और प्रिय की विरोधी वृत्तियों को स्वर दिया है, जो वैषम्य मूलक होते हुए भी प्रेमी पक्ष से एक निश्चितता की अनिवार्यता को संकेतित करता है। इसलिए इसे विरोधाभास अलंकार न मानकर विरोध वैचित्र नाम देना अधिक संगत है। इसके लिए घनानंद ने कहीं लाक्षणिकता की सहायता ली है तो कहीं उक्ति वैचित्र और प्रयोग वैचित्र की। प्रयोग वैचित्र के लिए यहाँ कुछ उदाहरण दर्शनीय है। दुर्याप नए हो इकोस मिलो, घन आनंद यो अन खान छिजो, और दीठ की दीठ न देख सको, सो अनोखियो रिज पर रिज खिजाऊ। इकोसे अन खान खिजाऊ, रिज पर रिज खिजाऊ आदि प्रयोग मात्र वैचित्र प्रदर्शन के लिए न होकर प्रेमी की अनिर्वचनीय स्थिति को प्रकट करते हैं। विलक्षण प्रयोग की दृष्टि से कुछ अन्य उदाहरण भी लिए जा सकते हैं। पहला, अरसान गही उही बान कछो, तरसान सुआन निहोरत है। दूसरा, मगहेरत दीठ हिराय गई, जब ते तुम आवनि अवधिपति बरसों कित हूँ घन आनंद प्यारे पय बढ़ती तय इत सोच न दी। यरा अति ऊँट उदेग की आँचने च्यावत आसनी मैन मदी कब आय हूँ अवसर जान सुजान बहिर लो बेसी तो जाति लदी। प्रथम उदाहरण में आदत का आलस्य ग्रहण करना विलक्षण है। आलस्य आदमी करता है, आदत नहीं, लेकिन उस आदत का आलस्य करना जो पहले आलसी नहीं थी, इससे प्रिय की जिस निष्ठुरता की व्यंजना हुई है वह प्रिय के आलस्य ग्रहण से नहीं हो सकती थी। निहोरा शब्द ब्रजभाषा में कृतज्ञता के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जिसमें निहोरता निहोरत क्रिया का निर्माण कवि का मौलिक प्रयास है। दूसरे उदाहरण में दृष्टि का खो जाना एक मुहावरा है, लेकिन मगहीरत के संदर्भ में हल्के विरोध की छाया से युक्त होने के कारण अर्थ में एक विशेष प्रकार की तीव्रता आ गई है। रास्ता देखते हुए दृष्टि का खो जाना अर्थात देखने के प्रयास में स्वयं खो जाना, जहाँ एक चमत्कार की सृष्टि करता है वहीं दूसरी ओर विरहणी की गंभीर स्थिति को भी संकेतित करता है। दूसरी पंक्ति में बादलों का कहीं बरसना और नदी का कहीं नेत्र बढ़ना में असंगति है, कारण कहीं और कार्य कहीं में असंगति मूलक विरोध है। इसी प्रकार एक तरफ सोच नदी का बढ़ना, दूसरी तरफ उद्वेग की आँच में उबलना में भी विरोध का आभास है। तीसरी पंक्ति में कामदेव द्वारा हृदय को उद्वेग की आँच में उबाल कर आंसू के रूप में मदिरा टपकाना एक विचित्र व्यापार है, जो काम व्यथा की ओर सूक्ष्म किंतु प्रभावपूर्ण संकेत है। बहीर लव बेसी के लदने में केवल उपमा का चमत्कार न होकर वीरानी की हृदय द्रावक हताशा को भी वाणी मिली है। इस प्रकार यहाँ मुहावरे, लाक्षणिक प्रयोग, असंगति, रूपक, उपमा आदि अलंकार, विरोध वैचित्र, प्रयोग वैचित्र आदि एक साथ मिलकर वीरानी की गंभीर मनोदशा की सफल अभिव्यक्ति करते हैं। अंतिम पंक्ति कब अयहूँ अवसर जान सुजान बहिर लव बेसी तो जाति लदी में वीरानी की कातर पुकार मूर्तिमान हो गई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा शैली के संबंध में भी घनानंद ने रीतिबद्धता की लकीर नहीं पीती है। उसकी दृष्टि शिल्प संबंधी नई संभावनाओं की ओर गई है। इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ठीक यही कहा है कि यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा और किसी कवि का नहीं। भाषा मानव इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तनी हो गई थी कि ये उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। इनके हृदय का योग पाकर भाषा को नूतन गतिविधि का अभ्यास हुआ और वह पहले से कहीं अधिक बलवती दिखाई पड़ी। अपनी भावनाओं के अनूठे रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ हिंदी साहित्य के इतिहास। कहना न होगा कि भाषा की इस शक्ति के पीछे उनके लाक्षणिक प्रयोग, विरोध वैचित्र, प्रयोग वैचित्र आदि का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रेम भावना को जिस सूक्ष्म एवं अछूते मार्ग पर घनानंद ने विचरण कराया है वह हिंदी के पुराने कवियों के लिए अपरिचित रहा है, लेकिन आगे आने वाले कवियों को उससे प्रेरणा मिल सकती है।